ओम शांति।
ओम शांति।
हम शुरू करें उससे पहले हम सब ताली बजाएंगे, पहले मैं बजाऊंगा फिर आप बजाएंगे, मेरे पीछे पीछे ताली बजाएंगे, ठीक है? मैंने तो नहीं बजाई, आपने क्यों बजाई? क्यों हुआ ऐसा?
माइंड
ट्यून हो चुका था, सो यू टुक इट फॉर ग्रांटेड कि अभी हाथ ऊपर गए ताली
बजने
वाले हैं। तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे सचमुच क्रोध पर विजय प्राप्त किया जाए। तो ऐसा नहीं करना, ध्यान से सुनना। जितना ध्यान से सुनेंगे आपको ज्यादा फायदा होगा। सिर्फ सुनना ही नहीं है, मेरे साथ साथ सोचना भी है। जितना आप मेरे साथ साथ सोचेंगे तो भी आपको वो बात समझ में आएगी और परिवर्तन संभव है। अच्छा रिस्पॉन्स भी दो, कोई बात समझ में आए तो हाँ हाँ करो, कोई हंसने की बात हो तो जोर से हंसो। हंसना आता है? हाँ या ना? अच्छा हंस के दिखाओ। देखिए बच्चे दिन में कहते 80 बार हंसते हैं, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हंसना भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि हर मौका ढूंढो, छोटी बात को बड़ी बना के भी हंसो। कहते हंसना क्रोध पर विजय प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपाय है। कोई परिस्थिति आ जाए तब आप क्रोध करो या हंसो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते नाइगरा का जो फॉल है हाँ उसके ऊपर एक और बाल्टी पानी डालो तो कोई फर्क पड़ना है। तो ऐसे ही सचमुच क्रोध करने के बदले हंसो, ताली बजाओ, कुछ भी करो, लेकिन चुपचाप नहीं बैठो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन बातों को फील करो, क्योंकि क्रोध पर विजय प्राप्त करना ये हम सबके जीवन की बात है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय में जब भी भाई बहन अलग अलग सेमिनार्स के लिए आते हैं तो उनको कहते हैं कि आपको कोई ना कोई अपने में बुराई है उसका दान दो, यहां पर छोड़ के जाओ। तो देखा है अधिकतर लोग यही लिखते हैं, यही संकल्प करते हैं कि हम क्रोध को छोड़ के जा रहे। तो क्योंकि सचमुच क्रोध हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, इसलिए इन बातों को सचमुच फील भी करना। एक बहुत बड़ी कंपनी में हाई लेवल की मीटिंग हो रही थी। करीब 1 घंटे की मीटिंग के बाद एक मैनेजर ने उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कहा कि सर मैं कभी से देख रहा हूं कि 1 घंटे में आपने करीब 4 ग्लास पानी पिया है, क्या आप वाटर थेरेपी करते हैं? हाँ। दूसरे एक जनरल मैनेजर ने कहा कि सर क्या आपको कॉन्स्टिपेशन है कि आप इतना ज्यादा पानी पीते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं वाटर थेरेपी भी नहीं करता हूं, नहीं मुझे कॉन्स्टिपेशन है, मैं तो क्रोध को कंट्रोल करने की थेरेपी कर रहा हूं। क्योंकि इस मीटिंग के दौरान ऐसी कई बातें सामने आती है कि जो मुझे पसंद नहीं होती है, तो मुझे अंदर में थोड़ी चीड़ आती है, तो तुरंत वह क्रोध को व्यक्त करने के बदले मैं ये 1 ग्लास धीरे धीरे पानी पी लेता हूं। तो पानी पीने से जो मुझे समय मिलता है 20-30 सेकंड का जो समय मिलता है, तो उस दौरान मैं सोचता हूं और सही रूप से फिर आपके सामने मेरे मन के भाव रखता हूं। तो ऐसे यह सबसे अच्छी बात है कि क्रोध को कहते पोस्टपोन करो तो उस पर विजय प्राप्त हो जाएगा। हाँ, आप में से कौन कौन समझते हैं कि क्रोध जरूरी है ना? गुस्सा नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, क्रोध नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, असिस्टेंट काम नहीं करेंगे, या कौन कौन समझता? हाथ उठाइए। बस एक एक व्यक्ति समझता है और नहीं समझते? अच्छा हाँ, 2-3 है, सही बात। हमेशा मैंने देखा है कि करीब 30% लोग होते हैं जो समझते हैं कि क्रोध जरूरी है। क्यों ऐसा समझते हैं? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ा है या तो सुना है कि क्रोध को दबाना नहीं चाहिए, क्रोध को दबाते हैं तो बुरा परिणाम होता है, क्रोध को अगर दबाएंगे तो कैंसर भी हो सकता है। अब तो बिल्कुल सही है कि क्रोध को हमें दबाना नहीं है, क्रोध को सप्रेस करना डेफिनेटली बुरा है, परंतु उतना ही बुरा क्रोध करना भी है। अगर जो हमारी ह्यूमन बिहेवियर है, हम अपनी ह्यूमन बिहेवियर को एक स्पेक्ट्रम के रूप में अगर समझे, तो एक कोने में तो सप्रेशन है और दूसरे कोने में गुस्सा है। हाँ, दोनों हार्मफुल है। जैसे हमेशा कहा जाता है कि बीच का मार्ग सबसे अच्छा होता है, तो ह्यूमन बिहेवियर में भी जो बीच का सबसे अच्छा मार्ग है वह है कि अपनी फीलिंग्स को व्यक्त जरूर करना है, जिसको कहते हैं एसर्ट करना। कोई बात आपको पसंद नहीं है तो जरूर बताइए, परंतु मन का संतुलन रख करके बताइए। क्रोध पर क्यों विजय प्राप्त करना चाहिए? क्योंकि क्रोध वह चंद पलों के लिए पागलपन है। उस समय हम पागल व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं, है ना। पागल व्यक्ति की क्या निशानी होती है? कौन के आधार से आप समझते हो कि पागल है? इसको मनोरोग चिकित्सक के पास लेना चाहिए।
क्या होती है?
हाँ, बेकार चिल्लाता है तो समझेंगे कि यह गालियां देगा,
रेड फेस हो जाएगा।
हाँ, रेड फेस हो जाएगा। अच्छा, हाँ। और पागल व्यक्ति की क्या निशानी होती है? हाँ, वो तोड़ फोड़ करेगा। हाँ, कोई व्यक्ति तोड़ फोड़ करेगा तो समझेगा इसको कुछ बीमारी हो गई है। और
अपने को भी हार्म करेगा, दूसरे को
अपने को भी, दूसरों को भी हार्म कर सकता है। और एक जो निशानी हम आमतौर पर समझते हैं कि जो अनरियल है वो भी उसको रियल लगता है, कि भी लोग मुझे देख रहे हैं, कोई मेरा पीछा कर रहा है, ऐसी बातें जो सचमुच रियल नहीं है। और अगर व्यक्ति ऐसी चीजें बोलने लगे तो हमें लगता है कि इसे कोई मानसिक बीमारी है। तो देखिए, क्रोध में भी करीब करीब ऐसा ही होता है। क्रोध में व्यक्ति तोड़ फोड़ करता है कई बार। क्रोध में परिस्थिति में पता नहीं होता है, गालियां बोलने लगता है, फिर पता चल गया ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। या तो जो अनरियल भी है, ऐसी भी बातें दूसरे को सुना देता है जो सचमुच नहीं है। तो इन सब से हम यह कह सकते हैं कि क्रोध सचमुच चंद पलों के लिए पागलपन है। तो इसलिए भी इस पर हमें विजय प्राप्त करना जरूरी है। और बीच का मार्ग कैसे अपनाएं, अगर ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी तो फिर आप ऑटोमेटिकली एसर्टिव बिहेवियर को अपनाने का सोचेंगे। मैं आपको दो तीन उदाहरण के द्वारा यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं। एक बार एक महिला, शाम का समय था, टीवी देख रही थी। उसके पति ऑफिस से आए, उन्होंने रिमोट से चैनल को चेंज कर दिया, तो उसको इतना गुस्सा आया कि बाजू में सोनी का वॉकमैन पड़ा था, वो पटक दिया। टीवी भी टूट गया, वॉकमैन भी टूट गया। फिर मनोचिकित्सा के एक सेशन में उसने कहा कि वह मेरा जो एपिसोड था वो मिस हुआ, उसका आज कोई गम नहीं है, परंतु वॉकमैन टूट गया, टीवी को हानि हुई। हाँ, वो अभी भी मुझे अंदर में पिंच कर रहा है। तो इसमें एसर्टिव बिहेवियर क्या होती? सबसे पहले तो आवश्यकता है कि हमें अपने विचारों को बदली करना है। कोई परिस्थिति क्रोध नहीं निर्माण करती है, परंतु हमारे विचार क्रोध निर्माण करते हैं। कहते हैं कि जो मीनिंग हम देते हैं परिस्थिति को, वो अर्थ है, वो अंदर में डिस्टर्बेंस निर्माण करता है। तो सबसे पहले तो अगर वह यह सोचती कि सारा दिन मैं घर में होती हूं, जो चाहिए वो टीवी का प्रोग्राम देख रही हूं, अभी मेरे पति ऑफिस से आए तो उनको भी जो मर्जी देखने दो, या तो दूसरा ये भी हो सकता था कि अगर वो बड़ा इम्पोर्टेंट था तो वो ये कहती कि जरा रुको एक मिनट, ये 10 मिनट मुझे देख लेने दो, फिर आप अपनी मर्जी का प्रोग्राम देखना, तो फिर से मान जाते चैनल को चेंज करने का। या तो अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट था तो दूसरा एक टीवी ला देते और दोनों को जो देखना है वो प्रोग्राम देखते। तो इस प्रकार से हमें रिस्पांस को परिवर्तन करना है। दूसरा एक सत्य उदाहरण है कि एक बार 2 साल का बच्चा खेलता खेलता वह डाइनिंग टेबल के पास पहुंच गया और वहां पर 500 रुपये की नोट पड़ी थी। उसने उठाई, खेला और फिर फाड़ दी। तो पिता को इतना गुस्सा आया कि उसकी पिटाई कर दी कि पिटाई कर दी तो बच्चा बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और हॉस्पिटल का बिल हो गया 3,400 रुपये। तो देखिए कि क्रोध से कैसा परिणाम आता है। इसमें भी असर्टिव बिहेवियर क्या होती, अगर पहले तो ये सोचते कि भी घर में इतना छोटा बच्चा है तो ऐसे 500 रुपए के नोट कहीं पे भी नहीं छोड़ देनी चाहिए, हो सकता है कल जहर की बोतल भी छोड़ देते हो पी जाता, तो ये हमारी गलती है। दूसरा भले उसको आंख दिखाते, ये भी उसमें अभी तो कुछ समझा नहीं सकते, बहुत छोटा सा है और थोड़ा बड़ा होगा फिर उसको हम समझा सकेंगे, है ना, आंख भी दिखा सकते थे, थोड़ा डांट भी सकते थे कि भी जिससे वो कुछ हद तक डरेगा भी और इस प्रकार की बात नहीं होगी। परंतु क्रोध करने से कितना बुरा परिणाम मिला। तो ऐसे असर्टिव बिहेवियर जरूरी है। और भी एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेंगे कि कैसे आज हम क्रोध में डिस्टर्बेंस फालतू निर्माण करते हैं, और ये भी सही उदाहरण है जिससे आपको प्रैक्टिकल जानने को मिलेगा कि क्रोध आता भी क्यों है। कि एक बार एक डॉक्टर के क्लिनिक में उनकी सेक्रेटरी 5,000 रुपये लेके भाग गई, तो उनको कोई उस दिन जरा भी टेंशन नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन उनके घर में पुश बटन टेलीफोन को रिपेयर करना था, तो वो लाइनमैन आया, लाइनमैन ने कहा कि मैं इसके 300 रुपये लूंगा। तो उन्होंने सोचा कि भी ये तो 50 रुपये का भी काम नहीं है, 300 रुपये क्यों मांगते। उसको बोलने लगा कि अरे तो 20 रुपये में होने वाला काम है, तुम 300 कैसे मांगते हो। वैसे आपस में डिस्कशन कर ही रहे थे तो उनके बूढ़े पिता अंदर से आए, उन्होंने कहा कि अरे दे देना 300 रुपये, क्यों इसके साथ इतनी माथा कुटी करता है। तो एकदम भड़क गए, कहते तुम चुप बैठो, मेरी बात में क्यों दखल डालते हो, और कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे। तो इसमें भी असर्टिव बिहेवियर क्या होती, पहले तो ये भी सोचते कि भाई देखो मेरे 5,000 रुपये का लॉस हुआ तभी तो टेंशन नहीं आया, अभी क्यों मैं फालतू टेंशन करता हूं। या तो भाई पिताजी बूढ़े हैं तो सोच रहे कि भाई ऐसी फालतू डिस्कशन ना करे, उसको दे दे। या तो ये भी सोच सकते उनको कहते थे कि डैडी आप जरा चुप बैठो, हाँ मैं मुझे इसके साथ डील करने दो, नहीं मैं समझता हूं कि इसके साथ कैसे डील करना है, तो वो शांत भी हो जाते। परंतु क्रोध से परिणाम नहीं मिलता है। तो इन तीनों उदाहरणों से आप यह समझेंगे कि असर्टिव बिहेवियर जरूरी है, क्रोध से हमें फायदा नहीं होता है। तो अब हम प्रैक्टिकली भी देखें कि क्रोध का जो मूल कारण है वह क्या है। अगर क्रोध का एक बार मूल कारण हमको समझ में आ जाता है तो फिर उस पर विजय प्राप्त करना भी सहज है। जैसे पहले भी कहा कि जो हम मीनिंग देते हैं परिस्थिति को, जो हम मीनिंग देते हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिस्थिति तनाव पैदा नहीं करती है। लंदन में दो डॉक्टर थे, उनकी पत्नियां किसी के साथ भाग गई। जब एक डॉक्टर को यह समाचार मिला तो उसको तो जोरदार गुस्सा आया, बोला मैं ये करूंगा ऐसा करूंगा, बहुत गुस्से में आ गया। जो दूसरे डॉक्टर थे उनको भी यही समाचार मिला, परिस्थिति एक जैसी आई, परंतु वो बिल्कुल मेंटली रिलैक्स थे, पीसफुल थे। दो दिन के बाद वो अपनी कार में हाईवे पर जा रहे थे, बहुत फास्ट गाड़ी चला रहे थे। तो कुछ देर के बाद उन्होंने रास्ते में देखा कि गाड़ी के आईने में दिखाई दिया कि जो ट्रैफिक पुलिस की वाहन भी उनका पीछा कर रही है। तो जब यह देखा तो गाड़ी को और भी फास्ट कर दिया, परंतु कैसे भी ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें ओवरटेक किया और रोक लिया। और फिर कहा देख भैया आज रविवार है, तू मुझे एक सही कारण बता दे कि इतनी हाई स्पीड से क्यों गाड़ी चला रहा था, तो मैं तुझे फाइन नहीं करूंगा। उसने सीधा उस पुलिस की आंखों में देखा और कहा कि क्योंकि आप पूछ रहे हैं तो सही कारण ही बताऊंगा। दो दिन पहले मेरी पत्नी ट्रैफिक पुलिस के साथ भाग गई है। जब मैंने अपनी गाड़ी के आईने में से देखा कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं, तो मैं सोचने लगा कि शायद अब उसको वापस लेके आ रहे हैं उससे बचने के लिए हाई स्पीड से गाड़ी चला रहा है। तो देखिए है ना, परिस्थितियां समस्या नहीं निर्माण करते। आपके लिए तो एक चुटकुला है, परंतु प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में भी हम देखते हैं कि एक परिस्थिति में तो व्यक्ति एकदम गुस्से में आ जाता है, दूसरा बिल्कुल शांत भी रह सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम मीनिंग क्या देते हैं परिस्थिति, और उसी को परिवर्तन करना होगा। और उसको परिवर्तन ऐसे ही नहीं कर सकेंगे, कई एक्सपर्ट्स इस बात को कहते हैं, पर सचमुच हम जो परिस्थिति का अर्थ निकालते हैं उसको परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक हम वास्तव में जीवन के बारे में सही रूप से नहीं समझते। देखो, हम अपने बारे में भी क्या कहते हैं, ह्यूमन हरेक फीलिंग का आधार आपके विचार है। और अब दूसरी बात कि जैसे हाथ को ऊपर नीचे करना हमारे कंट्रोल में है, मैं चाहूं तो हाथ को आधे घंटे तक ऊपर कर सकता हूं, भले थोड़ा सा दर्द होगा, मुझे तकलीफ उठानी पड़ेगी, परंतु ऐसा मैं कर सकता हूं क्योंकि हाथ को ऊपर करना मेरे कंट्रोल में है। ऐसे ही कुछ हद तक विचार भी हमारे कंट्रोल में है। क्या सोचना, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आप यह सोच सकते हैं कि भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, परिस्थिति मेरे नियंत्रण में आएगी ना, मुझे इस पर विजय प्राप्त मैं कर पाऊंगा। ऐसे कोई भी परिस्थिति आप चाहो तो अपने विचारों को भी मोड़ सकते हो, अर्थात विचार आपके कंट्रोल में है। तो देखो, दो इक्वेशन अभी दोनों को मिलाइए। पहला तो है कि हर फीलिंग्स का मूल आधार हमारे विचार है, और दूसरा इक्वेशन है विचार हमारे कंट्रोल में है। तो अभी एक दूसरा वाक्य बनाइए,
फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए विचारों पर नियंत्रण कीजिए।
अच्छा, एक और कुछ सिंपल है, दोनों को सीधा सा जोड़ो। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा कि फीलिंग्स भी हमारे नियंत्रण में है ना। सचमुच इस बात को समझो कि जो कुछ भी आप फील करते हो सचमुच आपके नियंत्रण में। और वो कब होगा कि जब ये बात बताई कि आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, वह बात हो जाएगी तो ऑटोमेटिक लोकस ऑफ कंट्रोल भी इंटरनल बनेगा। और लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल बनेगा तो आप खुद सोचेंगे कि मुझे बाह्य परिस्थिति पर निर्भर नहीं करना है, मुझे आंतरिक अपने विचारों को परिवर्तन करना है। और यह भी समझना चाहिए कि बाह्य जो कुछ है और जो अंदर है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। देखो ध्यान से सुनना, बाह्य दुनिया में जो है और हमारे अंदर जो है उसमें क्या फर्क है? जो बाह्य दुनिया में है वह टेम्पररी है, जो अंदर में है वह परमानेंट है। जो बाह्य दुनिया में है वह चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, जो अंदर में है वह अपरिवर्तनशील है। जो बाह्य है वह लिमिटेड है, जो अंदर है वह अनलिमिटेड है। सच मगर जो अंतिम बात है बहुत ये सत्य है, अगर आप गहराई से सोचो कि जो बाहर है वह अनरियल है, कहेंगे कि वह कल्पना है, परंतु जो अंदर में है वह रियल है। सच आउटसाइड इज इल्यूजन एंड व्हाट इज इनसाइड इज रियली अ ट्रुथ। बस ये बात पर आप थोड़ा गहराई से सोचना तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि हम धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लगेंगे। और जैसे जैसे आप अंतर्मुखी होने लगेंगे तो अंदर में जो अखूट खजाना है, अंदर में जो शांति गहराई से भरी हुई है, वह शांति का अनुभव आप कर सकेंगे। बस थोड़े से अभ्यास की जरूरत है, और इतना भी अभ्यास किया तो सदा के लिए क्रोध से मुक्त होना भी आपके लिए संभव हो सकेगा।
डॉक्टर साहब, जब हम राइट होते हैं और दूसरा व्यक्ति हमें गलत साबित करने की कोशिश कर रहा होता है, उस परिस्थिति में हम क्या करें?
अच्छा हाँ, तो तब भल कि भाई वो आपको रॉन्ग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एसर्ट जरूर करिए, पूरा लॉजिकली तर्क से उस बात को सिद्ध करने की भी कोशिश करिए, परंतु क्रोध से तो उल्टा डिस्टर्ब हो जाएंगे। क्रोध से क्या होता है, चर्चा ही वहां खत्म हो जाती है और आपको मौका ही नहीं मिलता है कि आप अपनी बात को सिद्ध कर सको। तो इसलिए भी ऐसी परिस्थिति में भी यह समझ लिए कि स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी से मैं सोचूंगी तो उसको सही मेरा तर्क दे सकूंगी, आपको भी नए नए रचनात्मक विचार आएंगे और आप ये सिद्ध कर सकेंगे कि आपकी बात सही है। ऐसी परिस्थिति में कई बार तो यह भी होता है कि आप कितना भी करो मानने वाला नहीं है, तो सबसे अच्छा है कि आप अपना तर्क पावरफुल बना दो कि मैं राइट हूं ना, उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं करो और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करो। इसमें हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको औरों के सामने नीचा दिखाना चाहता है, तो इसलिए आप वहां पर अपने आप को प्रोटेक्ट भी करिए। उसको कन्विंस करने की कई बार जरूरत नहीं होती, उल्टे आसपास आपके जो लोग हैं, परिवार के सदस्य, उनको कन्विंस करना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब में आपके बॉस या आपके कलीग्स हैं, उनको कन्विंस करना है कि नो इन व्हाट वे यू आर राइट। वहां अगर आप स्टेबिलिटी को रखेंगे, पीस ऑफ माइंड को रखेंगे, तो सही रूप से औरों को भी कन्विंस कर सकें।
इस समय अगर हम अपना तर्क रखेंगे तो ये नेचुरली है कि उस व्यक्ति को क्रोध आएगा ही आएगा।
हाँ जी हाँ,
तो उस समय हम उसको कैसे कन्विंस करेंगे?
तो एक तो हमेशा ही करेंगे, जब सामने वाले को क्रोध आए ना तो तब आप शांत रहो ना, उसको बोल लेने दो, क्योंकि वो पागलपन है। रास्ते भी हम देखते हैं ना, कोई पागल व्यक्ति आता है गालियां दे रहा है आपको, लेकिन इफेक्ट नहीं होती आप पर, क्योंकि समझते हैं पागल है। तो इससे तब मन ही मन भले सोचो कि भले अच्छा व्यक्ति है, लेकिन इस पर इस समय तो इस पर क्रोध का भूत सवार है, हाँ ये पागल है। तो भले दो तीन, वो ज्यादा समय नहीं चलता, वो 5 मिनट गुस्सा करेगा, कुछ बोलेगा, शांति से आप हंसो भी नहीं, नहीं कहीं दर अंदर मुस्कुराएंगे हंसाएंगे तो वो डिस्टर्ब होगा। तो आप पहले सीरियसली सुनो उसको, अंदर में सोचो कि भाई मैं राइट हूं, जब वो पूरा कर ले फिर आप उसको कहो कि देखो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, अब समझो तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं। थोड़े समय में शांत भी हो जाते हैं, जो क्रोधी होते हैं वह अधिकतर जल्दी से शांत, जब क्रोध खत्म हो गया तो शांत हो जाएंगे, तो तब फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको आप ठीक से बताओ तो संभव है कि वो मान जाएगा। तुरंत अगर आप भी गुस्से में आके कुछ बोलेंगे तो असंभव है, वो कभी भी अपनी बात को नहीं मानेगा।
डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने बताया कि क्रोध हमारे नियंत्रण में होता है, विचार तो कई बार हम क्रोध तो बाहर बाह्य रूप से नहीं करते, लेकिन हमें फील बहुत होता है, तो फीलिंग्स पे कैसे काबू पा सकते हैं?
तो वो भी एक प्रकार से क्रोध है ना। ऐसी कोई सिचुएशन है कि आप बाहर से बोल नहीं रहे हैं, तो फीलिंग्स पर विजय प्राप्त करने की भी युक्ति है कि अपने विचारों को चेंज करो। कई बातें हम और भी चर्चा करेंगे, क्रोध के कारण हमको समझने चाहिए, आपको क्यों क्रोध आता है वह भी समझ में आ जाना। आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि भी आपके क्रोध का मूल कारण क्या है, और एक बार कारण समझ में आ गया तो फिर तर्क के द्वारा हम कारण का भी निवारण कर सकेंगे। विचारों को बदली करके उसका निवारण करेंगे तो अंदर में भी जो डिस्टर्बेंस आता है वो डिस्टर्बेंस पर भी काफी हद तक विजय प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।